ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज हैं और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य व्यवस्था में बदलाव। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर विश्व में लगातार सबसे अधिक बनी हुई है। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद सेना लगातार मानवीय सहायता तथा राहत और बचाव कार्यों में लगी है। 1300 बचाव कर्मियों ने भारी मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आज पांचवें दिन खोज अभियान शुरू किया। सेना ने कहा है कि वो मलबे के नीचे गहराई तक खोज करने के लिए जेवर रडार और 4 रेको रडार मंगा रही है। आज मुख्य रूप से शवों की तलाश और जरूरी सेवाएं बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से केरल में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है, जिससे बीमा दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो और पूरा भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बीमा धारकों को तेजी से भुगतान करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि बीमा दावों को तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया में भी राहत दी गई है। बीमा कंपनियां भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों वायनाड, पालक्काड, कोझिकोड और त्रिशूर में विभिन्न माध्यमों से अपने बीमा धारकों की जानकारी हासिल कर रही हैं। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भुगतान के दावे किए गए हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। ग्रेटर नोएडा में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी ने पिछले 6 वर्षों में भारत के आतिथ्य उद्योग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शेखावत ने कहा कि देश में कृषि और पर्यटन दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें विस्तार की अभूतपूर्व क्षमता है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। अब तक करीब 7000 श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी करीब 1000 श्रद्धालु जगह जगह फंसे हुए हैं। गुजरात सरकार ने राज्य नगर पालिकाओं को अग्निशमन वाहनों और उपकरणों की खरीद के लिए कुल 63 करोड़ रूपये की अनुदान राशि आवंटित करने को मंजूरी दी है। ये राशि स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत आवंटित की जाएगी। गुजरात शहरी विकास कंपनी GUDC 54 नगर पालिकाओं के लिए 71 अग्निशमन वाहन और उपकरणों की खरीद करेगी। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शिमला और मंडी जिलों में राहत कार्यों में सहायता के लिए संसाधन जुटाए हैं। शिमला के समेज गांव में सेना की 3 टुकड़ी, 1 इंजीनियर टास्क फोर्स और 1 मेडिकल टीम तैनात की गई है। टीम ने सड़कों की मरम्मत की और 1 फुटब्रिज बनाया और प्रभावित नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। अमरीका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। इसराइल द्वारा हाल ही में हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं पर किए गए हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। लद्दाख में करगिल के कबाड़ी नाला क्षेत्र में भूस्खलन के कारण आज एक इमारत ढह गई जिसमें 12 लोग घायल हो गए। सेना, लद्दाख पुलिस और बचाव टीमों ने तेजी से बचाव अभियान शुरू किया और सभी घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए करगिल के जिला अस्पताल में सुरक्षित पहुंचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने दिल्ली के प्रमुख सचिव और पुलिस अधीक्षक को पिछले 1 महीने के भीतर दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे रैन बसेरों आशा किरण में 12 लोगों की मौत होने के संदर्भ में नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।